Obrigado.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. तो इस क्लास में हम सूरह अनआम की तफसीर पढ़ते हैं, मारुफुल कुरान जल्द नंबर 3 से। ये हमारी दरस कुरान की क्लास है, और कुरान का जो दरस है वो जाहिर है कि एक मुसलमान की जिंदगी में सबसे बुनियादी और कलीदी हैसियत रखता है या रखना उसको चाहिए, क्योंकि कुरान अजीम शान ये हमारे परवरदिगार का कलाम है, ये हमारे खालिक का, मालिक का, बल्कि हमारे सब कुछ का। अल्लाह ताला हमारा क्या है? अल्लाह ताला हमारा सब कुछ है। जो कुछ भी हमारे पास है वो सब कुछ अल्लाह ही का दिया हुआ है, बल्कि अल्लाह ताला ही सब कुछ है हमारे लिए। अल्लाह के अलावा और कोई हमारा नहीं हो सकता। जिसको हमारा बनाया वो भी अल्लाह ही ने बनाया, और जिसको हमारा नहीं बनाया वो अल्लाह ही ने नहीं बनाया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब हमसे बात करें अपने कलाम के अंदर बराह रास्त मुखातब हो करके, और हम ना सुने बल्कि हम उसके अलावा कुछ और चीज़ें सुनते रहें, लेकिन अल्लाह का कलाम ना सुने, ना अल्लाह का कलाम समझने की कोशिश करें, ना उसकी तरफ जस्तजू करें, ना उसकी तरफ जो है वो तवज्जो करें, तो हमसे ज़्यादा बेनसीब और कोई नहीं हो सकता। बदनसीब भी कह सकते हैं और बेनसीब भी कह सकते हैं। बदनसीब का मतलब कि हमें हिस्सा तो मिला लेकिन बुरा हिस्सा मिला, बदनसीब, और बेनसीब यानी कुछ भी ना मिला। तो यानी अपने ऊपर इस बात को वाजिब समझते हुए हमें इस दरस कुरान को और से सुनना चाहिए, और कुरान मजीद के साथ अपने रिश्ते को मजबूत से मजबूत तर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये जो आयात अभी हमने पढ़ी हैं, 51, 52, बल्कि 52, 53, 54 और 55, 55 तक या 52 से, तो इसका इनका जो है वो तर्जुमा और खुलासा तफसील हम पढ़ चुके थे। मारिफ मसाइल जो है वो पिछली चंद मजालिस से चल रही हैं। जुमे के दर्स में भी यही आयत और यही तफसीर चल रही होती है, तो यहाँ तक पहुँच गए थे। एक मिनट, आपने शेयर कहाँ से किया हुआ है? जुमे के हिसाब से किया हुआ है शेयर, या ठीक है, पेज नंबर 334। तो 334 के ऊपर हम ये बात पढ़ रहे थे कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो नबी अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया ना, वला तक़रुदिन लजीना, कि आप मत दूर कीजिए उन लोगों को जो कि अपने रब को पुकारते हैं सुबह और शाम, उसकी रजा को तलाश करते हुए, उसकी रजा को का इरादा करते हुए, यूरीदून वजहा, और आपके ऊपर उनका हिसाब नहीं किसी किस्म का भी, और उनके ऊपर आपका हिसाब नहीं किसी भी किस्म का। बस अगर आपने फतहुम, बस आप उनको दूर करने लगे, फतकून मिन अज़्ज़ालिमीन,
तो आप बेइंसाफों में हो जाएंगे या आपका काम जो है वो नामुनासिब होगा। तो इसमें हम इस बारे सफ़े के ऊपर पढ़ रहे थे कि वाकया इस तरह से हुआ था कि कुरैश मक्का के जो सरदार थे वो हज़रत अबू तालिब के पास आए, जो नबी अलैहि सलाम के सगे चचा और बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले और सपोर्ट करने वाले, उनके पास आए और कहने लगे कि हम तो तुम्हारे भतीजे के पास जाना चाहते हैं बात सुनने के लिए, लेकिन मसला यह है कि उसके पास तो गरीब गुरबा किस्म के लोग जो है ना, तो हमारे गुलाम हुआ करते थे, हमारे नौकर होते हैं वो लोग, उनका जमघट्टा लगा होता है उनके घर। तो हम तो बड़े और बड़े सोफिस्टिकेटेड किस्म के लोग हैं, तो हमारी तो बेइज्जती होती है ना ऐसे लोगों के साथ जाकर के एक ही जगह पर बैठ जाना। तो तुम उनसे कहो कि ऐसे लोगों को हटा दें तो फिर हम जाएंगे तो उसके पास। तो अबू तालिब ने जो है नबी अलैहि सलाम से ये बात जब नकल करी तो फारूक आजम ने नबी अलैहि सलाम को मशवरा दिया कि इसमें हर्ज ही क्या है, कुछ दिनों के लिए आप ऐसा भी करके देख लें, तो जो लोग आपके गिर्द रहते ही हैं तो ये तो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, बेतकल्लुफ लोग हैं, तो वो थोड़ी देर के लिए हट जाएंगे तो वो इस बात को बुरा भी नहीं बनाएंगे। तो इस पर ये आयत मज़कूरा नाजिल हुई जिसमें सख्ती के साथ ऐसा करने से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना फरमा दिया गया। नज़ूल आयत के बाद फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु को माजरत करना पड़ी कि मेरी राय गलत थी। ठीक है, तो फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो ये राय दी थी ना, ये कोई बदनीयती की बुनियाद पर नहीं दी थी। ठीक है, कि फारूक आजम तारन भी नऊज़ बिल्ला इन गरीब लोगों को जो है वो कमतर समझते थे और जो रउसाए कुरैश है उनको बरतर समझते थे, ऐसा हरगिज नहीं था। क्योंकि फारूक आजम रतान की जिंदगी के बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं कि जिससे के इन सरदारों के लिए उनकी नफरत जो है ना वो बहुत ज्यादा खुल के सामने आती है। ठीक है, वो तो इनको बहुत ही बुरा समझते थे और इनके साथ बड़ा सख्ती का मामला रखते थे, जबकि जो गरीब गुरबा मुसलमान थे तो उनके साथ तो इनका बहुत अच्छा रवैया होता था। तो ऐसा हरगिज नहीं था, बल्कि जो वो समझ रहे थे ना वो बिल्कुल अपने हिसाब से बिल्कुल सही समझ रहे थे। ठीक है ना, बल्कि हकीकत भी ऐसे ही थी कि अगर नबी अलैहिस्सलाम गरीब मुसलमानों को ये फरमा देते ना कि तुम लोग थोड़ी देर के लिए चले जाओ, तो उनमें से किसी ने भी माइंड नहीं करना था, राइट, किसी ने भी इसके ऊपर जो है वो दिल हल्का नहीं करना था, दिल खराब नहीं करना था कि क्यों हमें हटा दिया गया, हमें जो है वो हमारी गुर्बत की वजह से हटा दिया गया। नहीं, ये तो हम इस किस्म की हरकतें करते हैं ना कि हमारा बड़ा अगर हमें कोई हुक्म दे तो हम बड़े के ऊपर ही एतराज करना शुरू कर देते हैं, बल्कि आज के दौर में तो डांटने से भी जो है वो गुरेज नहीं करते। एक जमाना था जब औलाद जो है ना अपने माँ बाप को डांटा करती थी। ठीक है, ये जमाना भी जो है ना वो अब पुराना हो गया ऐसा लगता है। अब तो मुरीद जो है वो शेख को डांटा करते और ऐसे डांटते हैं कि जैसे कि वो पता नहीं क्या, यानी गिरी पड़ी किस्म की कोई चीज है। ठीक है, तो ये जमाना इस वक्त आया आ गया। वो तो बायोलॉजिकल रिलेशनशिप थी ना कि जो औलाद होती है वो तो अपनी मर्जी से तो नहीं पैदा होती माँ बाप के घर में। ठीक है, तो अब वो बायोलॉजिकल रिलेशनशिप है, तो भाई अब माँ बाप हैं वो उसको अच्छे नहीं लग रहे तो वो डांट देते हैं अपने माँ बाप को। ठीक है ना, उन्होंने माँ बाप को इख्तियार तो नहीं किया था ना अपनी इसलाह के लिए, वो तो अल्लाह ताला ने उनको माँ बाप दे दिए, तो अब मजबूरी है कि हम यही माँ बाप है हमारे, अब अच्छे नहीं लग रहे तो माँ बाप को डांट दिया, बल्कि मार भी देते थे माँ बाप को, चप्पल से मारने के भी वाकयात, जूते से मारने के भी वाकयात मौजूद है। लेकिन जो मुरीद होता है, राइट, मुरीद तो अपने इख्तियार से आता है ना शेख के पास, राइट, कुछ देख दाख करके आता है ना कि हाँ भाई ये कुछ है, अल्लाह से जोड़ने की उम्मीद है कि ये मुझे अल्लाह ताला से जोड़ने में मदद कर देंगे, ये मेरी इसलाह कर देंगे, शैतान के रास्ते में ये रुकावट बन जाएंगे कि मैं शैतान और नफ्स से जो है वो हारा हुआ हूं, तो वो ये सब कुछ देख करके आते हैं ना, और इसी वजह से तो फिर वो अपने शेख के साथ रहता है। ठीक है ना, तो ये तो इख्तियारी रिलेशनशिप है ना, तो अब इस इख्तियारी रिलेशनशिप के अंदर आप जो है वो शेख को डांटना शुरू कर दें तो क्या समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग? व्हाट इज रॉन्ग? समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग। ठीक है, तो हमें अल्लाह से तौबा करनी चाहिए, हमें अल्लाह ताला से तौबा करनी चाहिए कि हम कर क्या रहे, ये रिलेशनशिप क्यों बनाया था, क्या दुनिया की इज्जतों के लिए बनाया था, क्या दुनिया की माल दौलत के लिए या जो है वो मर्तबे के लिए बनाया था, राइट? या हमने अल्लाह को पाने के लिए बनाया? अगर ये रिलेशनशिप अल्लाह की खातिर बनाया था तो फिर इस रिलेशनशिप में ये हरकत तो फिर हमें अल्लाह ताला की निगाहों से बिल्कुल गिरा देगी ना, क्योंकि ये रिलेशनशिप तो अल्लाह के लिए बनाया था ना, राइट? तो हम इसको मामूली समझते हैं, हम इसको पता नहीं क्या समझते हैं, जैसे कोई मसला ही कोई नहीं है, हमारा हक था ये, ठीक है? तो सहाबा ऐसे नहीं थे ना, तो सहाबा ने तो हट जाना था फौरन से, वो तो आशिक सादिक थे, वो तो क्लियर थे अपने जहन के अंदर कि भाई नबी अलैहिस्सलाम तो अल्लाह से जोड़ने वाले हैं, शैतान के रास्ते पे रुकावट बनने वाले हैं, तो ये अगर हमें हटा रहे हैं तो इसमें हमारी कोई ना कोई भलाई होगी, हमारे लिए हमारी ही कोई खैर होगी इसके अंदर। तो बिल्कुल भी उनके दिल में ऐसी बात नहीं आनी थी सहाबा कराम के। लेकिन दूसरी तरफ अल्लाह रब्बुल इज्जत का मामला अलग है, ठीक है? अल्लाह का मामला क्या है कि अल्लाह ताला गैरतमंद है, ठीक है? तो ना सिर्फ अल्लाह ताला को अपने खिलाफ कोई बुराई जो है वो नापसंद है, बल्कि जो अपने बंदे होते हैं ना, जो वाकई अल्लाह वाले होते हैं, उनके खिलाफ भी अगर कोई बुराई हो या उनके खिलाफ भी अगर कोई मामला हो ऐसा जो कि किसी दूसरे के मुकाबले में, जिससे अल्लाह ताला को नफरत है, कुफर से काफरी से अल्लाह ताला को नफरत है, हमें हो या ना हो हमारे अल्लाह को तो नफरत है, ठीक है ना? आज तो ऐसे ऐसे भी नाम के मुसलमान आ गए हैं कि जो के कहते हैं कि अल्लाह ताला को क्या पड़ी है कि काफिर को, नॉन मुस्लिम्स को जो है वो सजा वजा दें, अल्लाह को क्या पड़ी हुई है, अल्लाह को ऐसे अल्फाज हैं बाकायदा, ठीक है ना? कहते हैं कि अल्लाह को और कुछ नहीं मिला ये करने के लिए कि वो उसको अजाब देता रहे, उसको जो है वो सवाब सवाब देता रहे, ठीक है? तुम तो अल्लाह से पूछ करके आए हो ना कि अल्लाह ताला को और कुछ मिला कि नहीं मिला, इस वजह से तुम ऐसी बातें करते हो, तुम्हें तो मेराज नसीब हुई थी, है ना? ऐसे लोग हैं ना इस वक्त बहुत सारे हैं इस तरह के। हमें परसों ही किसी ने बताया था कि एक साहब जो है ना वो इंडिया में बैठ करके इस तरह की बातें कर रहे हैं आजकल, और वो अकेले कोई थोड़ी है, बहुत सारे इस तरह के हैं कि अल्लाह और कुछ नहीं मिला अल्लाह ताला को ये करने के लिए, ठीक है ना? तो तुम अल्लाह से पूछ कर आए हो कि अल्लाह को क्या मिला और क्या नहीं मिला, कैसे पता तुम्हें कि अल्लाह को कुछ नहीं मिला है, अल्लाह को ये मिला है, अल्लाह को वो नहीं मिला? नहीं, असल में वो बंदा क्या कर रहा है, वो बंदा असल में कुरान का इनकार कर रहा है, राइट? कुरान मजीद का इनकार कर रहा है, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ये सब कुछ बता दिया हमें कि मैंने किसके साथ क्या करना है, जो इनकार करने वाला होगा, जो ऐसा होगा उसको जो है वो सजा मिलेगी, और जो इकरार करने वाला होगा, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं ये सब कुछ ही तो पढ़ रहे हैं हम। तो ऐसा बंदा, नाम चूंकि उसका मुसलमानों वाला नाम होता है ना, और कुछ उसने जो है वो वजाकता जो है वो मुसलमानों वाली बनाई हुई होती है, तो लोग समझते हैं कि ये बड़ा सही बात कर रहा होगा क्योंकि ये तो मुसलमान है, लेकिन असल में वो कुरान मजीद का मुनकर होता है, इनकार करने वाला होता है कुरान मजीद का, बल्कि कुरान मजीद भी और नबी अलैहिस्सलाम का भी इनकार करने वाला होता है ये शख्स, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने भी ये सारी बातें बताई हैं कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है, ठीक है ना? तो भाई अब आप जो है वो हिंदू होकर के बेशक ये वाली बातें करें, तो हिंदू तो होता है ना मुनकर, कुरान मजीद का और हदीस मुबारका का मुनकर है हिंदू, तो वो ऐसी बातें करे तो बात बनती है ना, तुम जो है वो हिंदू भी नहीं, अपना नाम भी चेंज करके हिंदू भी नहीं बनते हो, और नाम भी वही मुसलमानों वाला रखा हुआ है, और अपने आप को प्रेजेंट भी जो है मुसलमानों वाला करते हो, और बड़ी अल्लाह की रहमत की बातें करते हो कि अल्लाह को कुछ और नहीं मिला अजाब देने के अलावा, लेकिन क्या कर रहे हो असल में, तुम कुरान और नबी अलैहिस्सलाम का इनकार कर रहे हो, ठीक है? तो अल्लाह ताला ने खुद बताया है ना कि जी उसने क्या करना है क्या नहीं करना है। अब हम इल्म हासिल ना करें, जाहिल रहें, तो फिर ये हमारा कसूर है, जो आता है जो अपनी मर्जी से जो बोलता है और हम जो है उसको अच्छा समझना शुरू हो जाते हैं क्योंकि हम जाहिल हैं, बिल्कुल, ठीक है? इल्मी तौर पर जाहिल, अमली तौर पर नहीं, इल्मी तौर पर हम बिल्कुल ही जाहिल। तो यहाँ पे वाकया क्या है कि फारूक आजम को जो है वो माजरत करनी पड़ी कि मेरी भाई उनकी राय थी, अल्लाह ताला को जो है वो इन बंदों से इतनी मोहब्बत थी और उन कुफार से इतनी नफरत थी कि उन काबिले नफरत कुफार की खातिर जो के सरदारान थे ना, जो जिनका कि बिल्कुल मूड ही नहीं था बात मानने का, वो तो झूठ बोल रहे थे कि हम आगे सुनेंगे और फिर हम गौर करेंगे। अल्लाह ताला को तो पता था कि वो झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला को गवारा नहीं हुआ कि इन झूठों के लिए, मक्कारों के लिए और मुतकब्बिर सरदारों के लिए मेरे इन प्यारे बंदों को यहां से हटाया जाए, ठीक है। किस कहां से हटाया जाए? मेरे हबीब अलैहिस्सलाम की मजलिस से हटाया, ठीक है। तो फारूक आजम जैसे इंसान को भी माजरत करनी पड़ेगी, ठीक है, जो कि खुद अल्लाह ताला के महबूब बंदों में से एक जबरदस्त किस्म के ऊंचे दर्जे के बंदे थे। और दूसरी बात यह है कि फारूक आजम खान ने जो ये राय दी भी थी ना, ये यानी वही बात है, पहली एक्चुअली बात हो चुकी है कि बिल्कुल प्योर थे फारूक आजम। फारूक आजम रजान की आप बातें पढ़ें ना, ठीक है, हमने बल्कि बच्चों के साथ जो वो सीरत सहाबा वाली क्लास है और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लास, उसमें तो कई दफा फारूक आजम रजान का जिक्र आया है। और यहाँ तक हमने बात करी है कि फारूक आजम रजान जो है ना, ये इनकी बड़ी मुमासलत आती है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम के जो तौर तरीके थे ना, बिल्कुल फारूक आजम रतान के तौर तरीके जो है वो उन्हीं से जा करके मुशाबियत रख। तो दोनों के अहवाल ऐसे ही कोई नजर आते हैं कि वो भी गोया कि जो है ना, वो यानी एक लफ्ज साजिश ने सिर्फ बात समझाने के लिए और मोहब्बत ही के इजहार में, नाउज बिल्ला, इसको जो है वो बेअदबी की नजर से ना देखा जाए बिल्कुल, क्योंकि ये तो एक होता भी मोहब्बत वाला मुकाम होता है जिसको कहते हैं चहीता होना, किसी का चहीता होना। चहीता होने का मतलब पता है ना कि जिससे मोहब्बत होती है उसी को चहीता कहते हैं, लेकिन चहीते साहब जो होते हैं ना वो फरमाइशें भी बड़ी करते हैं, राइट, और वो जो है ना वो बातें भी बड़ी करते हैं, लेकिन वो इतने मुखलिस होते हैं और इतने यानी खुद मोहब्बत करने वाले होते हैं कि उनकी ऐसी बातें भी बुरी नहीं लगती, राइट, उनकी ऐसी बातें भी बुरी नहीं लगती। ये डेफिनेशन होती है चहीते की, ठीक है। यानी वो आगे से बढ़ बढ़ के बातें भी करें ना, तो उसकी बातें बुरी नहीं लगती बल्कि अच्छी लगती हैं, और आप जो है वो प्यार मोहब्बत में उसको जो है वो डाल देते हैं। मूसा अलैहि सलाम का मामला कैसा है? बिल्कुल ऐसे ही है ना कि मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, हाँ भाई तुम जाओ जाओ जाकर के फिरौन के पास, मूसा अलैहि सलाम आगे से फरमाइशें हैं, आप जो है वो ये कर दीजिए, आप मेरी जुबान में से लुकनत को निकाल दीजिए, बल्कि यहां तक कह दिया कि आप मेरे घर में से, घर वालों में से मेरा एक मददगार बना दीजिए। और फिर यहां तक भी चुप नहीं किया बल्कि घर वालों में भी नाम ले दिया, हारून अखी, मेरे भाई हारून को जो है मेरा मददगार बना दीजिए, है ना। अब ये कैसा है? ये ऐसे ही है ना जैसे कि अल्लाह ताला को बोल रहे हैं कि आप ये कर दीजिए, आप ये कर दीजिए, है ना, अल्लाह ताला को तजवीज दे रहे हैं। अभी जो है वो बड़ी वायरल हुई भी एक तहरीर हजरत मौलाना यूसुफ लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह की, कि जिसमें उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला को तजवीज नहीं देनी है, ठीक है ना, हमने तो अल्लाह ताला के सामने तफवीज करनी है, अल्लाह जो आपकी मर्जी आप वो कर दीजिए, है जो आपकी मर्जी वैसे ही उसी के ऊपर मैं राजी हूँ, लेकिन अल्लाह को ये बताना कि ऐसे नहीं ऐसे कर दीजिए, तो इसको तो तजवीज करना कहते हैं ना, तजवीज करना तो बहुत बुरी बात होती है। अल्लाह को आप तजवीज कर रहे हैं कि ऐसे कर दीजिए, राइट, गोया अल्लाह को नहीं पता कि क्या करना चाहिए। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो अल्लाह ताला को तजवीज कर रहे हैं, बल्कि पता नहीं उससे भी ज्यादा कोई दर्जे की चीज कर रहे हैं कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मुझे जो है वो कोई मददगार दीजिए, और मददगार भी कौन, मेरे घर का मददगार होना चाहिए, घर का बंदा होना चाहिए, और घर का बंदा भी कौन, मेरा अपना भाई हारून होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन आगे से अल्लाह ताला बिल्कुल नाराज नहीं हो रहे, बिल्कुल जो है ना वो डांट डपट नहीं हो रही, बल्कि हाँ ठीक है तुमने जो मांगा तुमने जो कहा ले लो, हारून को जो है वो हम तुम्हारा मददगार बना देते हैं, उसको नबुवत दे देते हैं। नबुवत इस तरह मिलती है भाई के कहने के ऊपर, नबुवत तो इस तरह नहीं मिलती, नबुवत तो अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पे नबुवत दे रहे हैं, ठीक है ना, इसको कहते हैं चहीता, राइट, नाराज बिल्कुल भी नहीं हो रहे। उमर फारूक खतान के भी मामला ऐसे ही लगते हैं। अब जाहिर है उमर रतान नबी तो नहीं थे ना, तो अल्लाह ताला से डायरेक्ट बात तो अल्लाह उमर रतान की नहीं होती थी, तो उमर रतान तो सहाबी रसूल थे, तो उमर रतान की बात किससे होगी, नबी अलैहिस्सलाम से होगी ना। मूसा अलैहिस्सलाम की बात तो अल्लाह से होगी क्योंकि वो नबी है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम तो सहाबी हैं, तो सहाबी की बात तो नबी से होगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम की नबी अलैहिस्सलाम के साथ कॉन्वर्सेशन इस तरह की बहुत सारी कि जिसके अंदर बजाहिर लगता है जैसे बेअदबी हो रही है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम बिल्कुल माइंड नहीं कर रहे हैं, राइट। और बल्कि जो है वो उनको और साथ साथ और साथ साथ और साथ साथ रखे हुए, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही मामला है कि फारूक आजम खान जो है उन्होंने अपने तौर पे तो माजरत करी, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम को उनके ऊपर नाराज वराज कोई नहीं हुआ, ठीक है। बहरहाल ये बातें करके हम आगे बढ़ते हैं कि ये वाकया हो गया कि जी नबी अलैहिस्सलाम ने ज़ाहिर उन लोगों को फिर अपने मजलिस से नहीं हटाया, और ये सारे वो गरीब हजरात जो थे उनके नाम भी लिखे हुए हैं। और फिर दूसरी आयत भी इसी यानी मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने लिखा है आखिरी पैराग्राफ में इस पेज के ऊपर कि चौथी लाइन में कि कुरान मजीद में इसी के मुतालिक दूसरी जगह इसकी ताकीद इन अल्फाज में आई है, वस्बिर नफ्सक मअ अल्लज़ीना यदउना रब्बहुम बिलग़दाति वल अशी युरीदुना वजह। ये तो वही आयत यानी वही अल्फाज हैं जो कि सूरह अनआम के अंदर हैं, ठीक है। लेकिन आगे फरमाया वला तअदु अयनाक अनहुम तुरीदु ज़ीनत अल हयात, और तुम अपनी और आप अपनी आंखों को, आपकी आंखें जो है ना वो उन लोगों के चेहरे पर से हटनी नहीं चाहिए, तुरीदु ज़ीनत अल हयात दुनिया, दुनिया की जीनत, दुनिया की जो है वो चकाचौंध को चाहते हुए का इरादा करते हुए, क्योंकि जब इन लोगों के ऊपर से आपकी तवज्जो हटेगी ना तो बाकी जो है ना फिर दुनिया की चकाचौंध यानी वो जो सरदाराने कुरैश है जिनके पास माल भी है जिनके पास जो है वो मर्तबा भी है, तो इन पे इनसे हटेगी तो फिर ऑटोमेटिकली उधर जाएगी, ठीक है। इनसे हटेगी अगर देखें कितनी अहम बात है ये हमारे लिए भी कि देखें हम समझते हैं ना कि नहीं अगर हमारा फोकस गरीबों पर नहीं होगा तो क्या हो गया, कोई मसला कोई थोड़ी है इसके अंदर, ठीक है। हम फिर भी जो है वो नेक रहेंगे, हम फिर भी जो है वो अल्लाह वाले रहेंगे, ठीक है। अगर हमारा फोकस अल्लाह वालों पर नहीं हुआ, ठीक है, अगर हमारा फोकस अल्लाह वालों पर नहीं हुआ तो हम समझते हैं फिर भी कोई बात नहीं, हम फिर भी नेक रहेंगे, फिर भी हम दुनिया की मोहब्बत से बचे रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं, दुनिया की मोहब्बत से बचने के लिए लाजमी है कि अल्लाह वालों के ऊपर हम निगाहों को जमा के रखें, उनके ऊपर फोकस रहें। अगर हमने उनके ऊपर से फोकस हटा दिया ना तो ऐसा नहीं होगा कि हम फिर भी महफूज रहेंगे, हरगिज हरगिज ऐसा नहीं हो सकता कि हम फिर भी महफूज रहेंगे, ठीक है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में क्या फरमा रहे हैं कि वला तअदु अयनाक अनहुम तुरीदु ज़ीनत अल हयात, कि इनके ऊपर से तुम्हारी नजर नहीं हटनी चाहिए। कौन लोग हैं? सिर्फ इनकी डेफिनेशन ये तो नहीं है कि ये माली तौर पर गरीब लोग थे, बल्कि इनकी डेफिनेशन अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क्या क्या फरमाई है, इनकी तारीफ या इनकी डेफिनेशन कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ये तो नहीं फरमाई कि जिनके पास माल और दौलत नहीं होता उनके ऊपर से तुम्हारी निगाहें हटनी नहीं चाहिए, है ना। तो फिर इसका तो मतलब है कि सारे गरीब जितने भी गरीब लोग हैं उनके ऊपर हम जो है वो फोकस करके बैठे रहें ताकि दुनिया की मोहब्बत हमारे अंदर ना आए। नहीं, अल्लाह ताला ने इन लोगों को ऐसे डिफाइन ही नहीं किया कि ये वो लोग हैं जिनके पास माल और दौलत नहीं होती, बल्कि कैसे डिफाइन किया इन लोगों को ये वो लोग हैं जो कि सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं और इनकी नीयत जो है ना वो खाली अल्लाह की रजा होती है, इनकी नीयत अल्लाह की रजा होती है और ये अल्लाह ताला को पुकारते हैं, अल्लाह ताला से दुआएं मांगते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन होती है अल्लाह वाले की, ये नहीं कि आपके पास बैंक अकाउंट में कोई पैसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे गरीब ऐसे होते हैं कि जो मालो दौलत से तो महरूम होते हैं लेकिन उनके दिल दुनिया की मोहब्बत से भरे हुए होते हैं, राइट। कितने गरीब हैं कि जिनके पास मालो दौलत है तो नहीं लेकिन वो ख्वाब देखते रहते हैं हर वक्त मालो दौलत के, तो ऐसा जो गरीब होता है ना वो अल्लाह वाला नहीं होता, बल्कि वो दुनिया वाला होता है, वो दुनिया वाला होता है, वो अल्लाह वाला नहीं होता। अगरचे कि इसके हाथ में कोई दुनिया नहीं है, लेकिन दिल में दुनिया है, ये दुनिया वाला है। अल्लाह वाला तो कौन होता है कि जिसके दिल में भी दुनिया ना हो, राइट? सिर्फ अल्लाह की रजा का तालिब हो। तो इस वजह से बहुत से अमीर कबीर भी जो है ना, वो भी अल्लाह वाले होते हैं। हाथ तो उनके माल दौलत से भरे हुए होते हैं, लेकिन दिल माल दौलत की मोहब्बत से खाली हो। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने इन लोगों को कैसे डिफाइन किया? अल्लदीना यदउना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदुना वजह, ये है उनकी तारीफ। ठीक है, और नबी अलैहिस्सलाम को क्या फरमा रहे हैं कि इन लोगों से अगर आपका आपकी तवज्जो हटी ना, तो ऑटोमेटिकली जो है वो जीनत अल हयात दुनिया के इरादा करने वाले अब बन जाएंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने तो करना ही नहीं था ऐसा, तो फिर ये किससे बात हो रही है? ये हमसे बात हो रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से अल्लाह ताला हमसे कलाम कर रहा है। जैसे कि कई ऐसे मामलात, कई ऐसे मवाक़े जो हैं वो कुरान मजीद के अभी हमने रिसेंटली ही पढ़े हैं, सूरह बनी इसराइल से लेकर के अभी तक सूरह अनाम के अंदर, कि अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम को बात कहते हैं जो कि नबी अलैहिस्सलाम ने तो करनी ही नहीं थी, तो फिर क्यों करी? हमें सुनाने के। ठीक है, तो अल्लाह वालों के साथ जो ताल्लुक जोड़ना है ना, ये हमारी जरूरत है। ठीक है, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, वरना हम वही दुनिया की मोहब्बत वाले बन जाएंगे। और दुनिया की मोहब्बत फिर क्या है? हुब्बुद दुनिया रासु कुल्ल खतियत। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दुनिया की मोहब्बत तमाम गुनाहों की जड़ है। तो जब दुनिया की मोहब्बत आ गई, तो फिर तो गुनाह जो है उनके गुनाह के पौधे निकलेंगे, फिर हमारे दिल के अंदर से फूटेंगे, फिर गुनाह गुनाह हमारे अंदर से। ठीक है, उससे बचने का यही एक तरीका है। तुरीदो ये ला तादु आईना का हम, और आगे फरमाया वला तुत मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाहु वकाना अमलुहु फुरता, और नहीं तुम अताअत करना उसकी जिसके कल्ब को हमने अपने जिक्र से गाफिल कर दिया, यानी उसकी जिद और हठधर्मी की वजह से उसको हमने सजा ये दी कि उसका दिल जो है वो हमारी याद से बिल्कुल गाफिल हो गया। ठीक है, यानी अल्लाह ताला ये जो, क्योंकि दिल जो है ना, ये हमारे कंट्रोल में नहीं। हमारे कंट्रोल में क्या चीज है? हमारी अकल। हमें अल्लाह ताला ने इसी का इख्तियार दिया, अकल का। अब अकल से जब हम गलत फैसला करते हैं, तो अल्लाह ताला क्या करते हैं? अल्लाह ताला हमें उसके ऊपर तंबीह करते हैं, हम तक मैसेज पहुंचवाते हैं किसी ना किसी जरिए से, ये तुमने गलत डिसीशन लिया है, तौबा कर लो। ठीक है, अल्लाह ताला हमारे पास रसूल भेजते हैं, या रसूल का कोई मैसेंजर भेजते हैं कोई ना कोई जरिए से, हम तक जो है वो अल्लाह ताला इल्म पहुंचाते हैं ये तुमने गलत काम किया। ठीक है, अब हम अगर उस मैसेंजर की बात को मान लें, तो फिर मामला खत्म हो जाता है। लेकिन अगर हम नहीं माने, बल्कि अगर हम उसके साथ दुश्मनी वाला रवैया कर, ठीक है, जो हमारा नासिह है, नसीहत करने वाला है, हम उसके साथ बदतमीजी करना शुरू करते हैं, हम उसके साथ दुश्मनी करना शुरू करते हैं, तब अल्लाह ताला क्या करते हैं? तब अल्लाह ताला उसके ऊपर सजा देते हैं, बड़ी सख्त किस्म की सजा। और वो सजा क्या होती है? अल्लाह ताला हमारे दिल को अपनी याद से गाफिल कर। ठीक है, हाँ, दरमियान की भी एक चीज है। दरमियान का रास्ता क्या है कि जब हमने कोई गलत डिसीजन लिया, ठीक है, तो उसकी वजह से हम गलत काम के मुर्तकिब हुए, अब कोई हमारे पास नसीहत करने वाला आया, अल्लाह ताला ने कोई भेजा, कोई ना कोई जरिया भेजा नसीहत का, तो हमने उसकी बात सुन तो ली, लेकिन हमने उसकी बात के ऊपर अमल नहीं किया, तौबा नहीं करी, लेकिन हमने उससे दुश्मनी भी नहीं करी, राइट? हमने उससे दुश्मनी भी नहीं करी, बात भी नहीं मानी, यानी तौबा भी नहीं करी, लेकिन दुश्मनी भी नहीं करी। तो इससे क्या होता है? इससे जो है ना, वो गुनाह तो हमारा हो जाता है, और गुनाह का अपना असर हमारे ऊपर बुरा होता है, लेकिन हमारे कल्ब को बिल्कुल लॉक नहीं कर दिया जाता, मोहर नहीं लगा दी जाती। मोहर कब लगाई जाएगी? जब नसीहत करने वाले के साथ हम दुश्मनी करेंगे, ठीक है, तब जो है ना वो कल्ब के ऊपर मोहर लगा दी जाएगी। उसी को दूसरे अंदाज में कहते हैं कि बिल्कुल अल्लाह की याद से गाफिल कर दिया जाएगा। तो ये नसीहत करने वाले के साथ दुश्मनी की वजह से ये वाला फिर में मामला हमारे साथ क्या रहा, ठीक है। तो अल्लाह ताला यहाँ पे किसके क्या फरमा रहे हैं, ला तुत अमन अगफलना कल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबा हुआ, और उसका दूसरा क्या हाल है कि वो अपनी ख्वाहिशात की इत्तबा करता है, वकान अमरुहु फुरता, और उसका जो मामला है वो तो हद से गुजर गया है। फुरता, फुरता का लफ्ज वही है कि जो कि हम उर्दू में कहते हैं ना इफरात, इफरात यानी हद से ज्यादा बढ़ी हुई चीज के लिए हम इफरात का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये फुरता जो है वो उसी का यानी मसदर, उसी का रूट वर्ड है। तो फरमाया कि जिसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हिदायत दी गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नफ्स को लोगों से इन लोगों में बांध रखें, नत्थी करके रखें, जोड़ के रखें, जो सुबह और शाम यानी हर वक्त अपने रब की इबादत करते हैं इखलास के साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नजरें उनके सिवा किसी पर ना डालिए, जिसकी गर्ज यही हो सकती है कि हयात दुनिया की जीनत से, यानी ये जो मेरे जाकिरीन बंदे हैं, ये जो मेरी रजा को चाहने वाले बंदे हैं, अगर इनसे आपकी नजर हट गई तो फिर तो यही हो सकता है उसका मतलब कि हयात दुनिया की जीनत मकसूद है फिर इसका, ठीक है। और आगे फरमाया ऐसे लोगों की बात ना मानिए जिनके दिलों को हमने अपने जिक्र से गफलत में डाल दिया, और जो अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पैरो हो गए, और जिनका काम ही हुदूद से निकल जाता है। आयत मस्कूना में इन गरीब लोगों की सिफत ये बताई कि वो सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं। इसमें सुबह और शाम से मुराद मुहावरे के मुताबिक रोज और शब के तमाम औकात, ठीक है, यानी सिर्फ सुबह को पुकारते, सिर्फ शाम को पुकारते और दिन में गाफिल रहते हैं, ये इसका मतलब नहीं है, बल्कि 24 घंटा अल्लाह ताला की याद में ही लगे रहते हैं। जुबान से अगर बाजार में हावताव भी कर रहे होते हैं ना, तो भी दिल इनका अल्लाह ताला की याद में लगा, इनका ध्यान हर वक्त अल्लाह की तरफ रहता है, ठीक है। और पुकारने से मुराद जो है वो इबादत करना है, क्योंकि अद्दुआओ मुखुल इबाद, क्योंकि पुकारना जो है ये बजाहिर तो हम दुआ के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, तो भाई अगर दुआ पुकारना इज इक्वल टू दुआ, तो दुआ के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने हमें क्या बताया, अद्दुआओ वल इबादा, अद्दुआओ मुखुल इबादा, कि दुआ तो इबादत का मगज है बल्कि दुआ ही इबादत है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है नमाजें छोड़ दो अब खाली दुआएं मांग करो, ये इसका मतलब नहीं है, बल्कि यानी दुआ बेहतरीन इबादत है, और नमाज मात पढ़ना जो है वो फर्ज है, ठीक है, रोजा रखना फर्ज है, ज़कात देना फर्ज है, और दुआ इसकी आइसिंग ऑन द केक है। रोज और शब की इस इबादत के साथ ये कैद भी लगा दी कि यूरीदूना वजह से बतला, जिससे बतला दिया कि इबादत में जब तक इखलास ना हो उसका कोई एतबार, ठीक है ना, यानी इबादत कर रहे हैं लेकिन अल्लाह के लिए नहीं कर रहे, जन्नत के लिए नहीं कर रहे, बल्कि दुनिया का कोई फायदा हासिल हो जाए, है ना, सेहत अच्छी हो जाए, रोजे रख रहे हैं सेहत अच्छी हो जाए, ठीक है, नमाजें पढ़ रहे हैं ताकि जो है वो बस कोई मसला हल हो जाए मेरा, या नमाजें पढ़ रहे हैं कि भाई लोग देखेंगे तो उनके दिल में मेरी कदर पैदा होगी, मोहब्बत पैदा होगी, कितने अच्छे से नमाजें पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फिर ऐसी इबादत का कोई एतबार नहीं, यानी इसका जो है ना वो वजन कोई नहीं होगा, नामे अमाल के नामे अमाल में वजन के लिए तो जन्नत की नीयत करनी जरूरी। आखिर आयत में जो ये इरशाद फरमाया गया कि उनका हिसाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिम्मे नहीं है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिसाब उनके जिम्मे नहीं है, तो इसके ऊपर ना यानी ये जो हिसाब है ना कि माँ हिसाब हूँ माँ अली का मिन हिसाब है मिन शहीन व माँ मिन हिसाब का अली है मिन शहीन, तो इसमें इब्ने अतिया और जमखशरी रहमतुल्लाह अलैह, ये बहुत बड़े मुफस्सरीन कुरान गुजरे हैं हमारी तारीख में, तो तफसीर कशाफ इमाम जमखशरी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई बहुत मशहूर तफसीर है। तो इनकी तहकीक के मुताबिक, बल्कि इनके अलावा और भी हैं जिनका नाम शफियन, तो इन्होंने यहाँ पे नहीं लिखा है, क्योंकि वगैरह हु का मतलब है इनके अलावा और भी हैं। तो इनकी तहकीक के मुताबिक इसने हिसाबहुम और अलैहिम की जमीरें उन रउसाए मुशरिकीन की तरफ राजिया हैं जो गरीब मुसलमानों को मजलिस से हटा देने की फरमाइश किया करते थे। ठीक है ना, यानी बड़ी अजीब हजरत ने, यानी इन हजरात ने तहकीक लिखी है, जो ग्रामर वगैरह समझते हैं उनको ज्यादा अच्छी तरीके से ये बात समझ में आ जाए। इसी वजह से ना ग्रामर अरबी की जो है वो पढ़ लेनी चाहिए। ठीक है, बाकी हम अल्लामा और शल्लामा बनने के लिए कोई किसी को नहीं प्रोमोट कर रहे आजकल, लेकिन ग्रामर अरबी की कम से कम जो है ना ये एक बेस नॉलेज है, ये तो पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि उसके बगैर आपको ये आयत समझ भी नहीं आएगी। ठीक है, तो मा अलैका मिन हिसाबिहिम मिन शैइन व मा मिन हिसाबिक अलैहिम मिन शैइन। तो इसमें जो हिसाबिहिम, ठीक, चैट विंडो मेरे सामने खुली भी नहीं है, इसलिए पूछा गया, क्या औलाद के लिए दुआ करना भी दुनियावी दुआ होगी? नहीं, देखिए दुआ एक अलग चीज है। दुआ जो है ना, ये तो अगर आपका जूते का तस्मा भी टूट जाए ना, ठीक है, शू लेसेस, तो शू लेसेस भी टूट जाए ना, तो उसी वक्त अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह मुझे नए शू लेसेस दिला दीजिए। हदीस मुबारक के अल्फाज है, ठीक है, कि जूते का तस्मा भी टूट जाए तो अल्लाह से माफ। ठीक है, तो बेटे के लिए शादी की दुआ, या बेटे के लिए जो है वो हिदायत की दुआ, या बेटे के लिए जो है वो नौकरी की दुआ, ठीक है ना, ये तो दुआ तो मामला ही डिफरेंट है। हम तो बात कर रहे हैं जिसको के दुआ के अलावा जो इबादत के आमाल होते हैं ना, कि रोजा रख रही हूँ, डाइटिंग हो जाएगी, ठीक है, और जो है वो नमाज पढ़ रही हूँ, उसके ऊपर फिर आपने सवाल में समझाया ना, उनके अंदर जो है ना, या चैरिटी कर रही हूँ तो लोग बड़ा अच्छा समझेंगे कि हाँ भाई ये तो बड़ा खैरात करती है, ठीक है, वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, कोई सवाब नहीं मिलेगा उसके ऊपर। लेकिन दुआ का कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट, दुआ में तो हर चीज अल्लाह से मांगनी है, हर वक्त अल्लाह से मांगना है, चाहे दीन की चीजें हो, चाहे दुनिया की चीजें हो, कुछ भी। हाँ, हराम चीज अल्लाह से नहीं मांगनी है, राइट, ऑफ कोर्स, हराम जो अल्लाह ने मना कर दिया इस्तेमाल करने से, वो अल्लाह से नहीं मांगना। ठीक है, बेटे की ना उठा कोई सूदी कारोबार है तो उसमें बरकत हासिल हो जाए, नहीं, ये दुआ नहीं, ये दुआ तो फिर गुनाह का सबब बन जाएगी। व्हाट इज देन तजवीज मींस, व्हाट इज देन तजवीज मींस टेलिंग अल्लाह व्हाट ही शुड डू, यही मतलब है तजवीज की। आप मूसा अलैहिस्सलाम तो नहीं है ना, ठीक है, तो आप उमर रज़ादान भी नहीं है, तो फिर आप जो है ना वो तजवीज़ करने की कोशिश ना करें बता। अच्छा भाई, जूते का तस्मा मांगना, बेटे के लिए दुआ मांगना, अच्छी दुआ, अच्छा रिस्क बन जाए उसका, ठीक है, उसका फलाना मसला हल हो जाए, तो ये तजवीज़ में नहीं आता। ठीक है, तजवीज़ तो अच्छा, तजवीज़ के चले अब आपने, ठीक है, मैं अब समझ रहा हूँ आप, यू नो व्हाट आर यू गेटिंग एट। ठीक है, तो तजवीज़ का जो असल मफहूम होता है ना, ठीक है, वो खाली ये नहीं होता कि अल्लाह ताला से जो है वो जूते का तस्मा टूट गया तो अब अल्लाह ताला ने तोड़ दिया, तो अब मैं क्यों मांगू अल्लाह ताला से जूते का तस्मा, जब अल्लाह ताला ने जूते का तस्मा मेरा तोड़वा दिया, तो अब मैं क्यों जूते का तस्मा मांगू अल्लाह ताला से, ये तो तजवीज़ करना हो गया। ठीक है, या जो है वो मेरे बेटे की जॉब खत्म हो गई तो मैं अल्लाह ताला को क्यों कहूँ कि मेरे बेटे को दूसरी जॉब दिलवा दीजिए, ये तो तजवीज़ करना हो गया। ठीक है, नहीं, ठीक है, ये भी तजवीज़ करना, ये तजवीज़ करने के लिए आता है। ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत जो है ना, इसी वजह से सुन्नत से हमें बात समझ, देखिए सुन्नत के मुताबिक जो चीज़, जिस चीज की दुआ मांगना जायज है ना, वो तजवीज में नहीं आएगा। जैसी दुआएं नबी अलैहिस्सलाम ने मांगी, ठीक है, और नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा ने मांगी, तो वैसी दुआएं मांगना जो है वो तजवीज करने में नहीं आएगा। तजवीज करने में सबसे पहली चीज तो ये है कि जबकि आप जो है ना वो आजिजी के साथ बात नहीं कर रहे, बल्कि एक ऑर्डरिंग मोड में बात कर रहे हैं। मोड इज ऑर्डरिंग, ठीक है ना। तो भाई दुआ तो आजिज़ी के साथ बात करने को कहते हैं ना, आजिज़ आजिज़ी के साथ मांगने को कहते हैं, ठीक है ना। अपने आप को मोहताज समझ करके, अपने आप को बेबस समझ करके, और अल्लाह ताला को हर चीज का कादिर समझ करके, ये दिल की कैफियत होती है। तो उसमें जो चीज मांगी जाती है ना, वो दुआ कहलाती है, वो तजवीज नहीं कहलाती, ठीक है। वो जो मूसा अलैहि सलाम वाला मामला था ना, वो तो चहेते वाला मामला था ना, ठीक है ना, वो तो चहेतेपन वाला मामला था। तो हम तो अपने लिए चहेतेपन वाला फैसला नहीं कर सके, हम तो अल्लाह के चहेते हैं, तो हम अल्लाह ताला से जो इस तरीके से मांगेंगे जिसमें आजिजी नहीं होगी, जिसके अंदर जो है वो नहीं होगा, बेबसी की कैफियत नहीं होगी। नहीं, हम तो नहीं है। तो हमने तो जो है ना, बस आजिजी के साथ अल्लाह ताला से मांगना है, वो तजवीज नहीं होगी। और दूसरी चीज तजवीज के, यानी तजवीज को जो चीज तजवीज बनाती है वो ये होती है कि आप कमांड मोड के अंदर बात कर रहे हैं, डिमांडिंग एंड ऑर्डरिंग मोड में बात कर रहे हैं, तो वो तजवीज बन जाती है, ठीक है। और दूसरी चीज ये होती है कि अगर अल्लाह ताला आपकी दुआ के ऊपर आपके मर्जी के, जो आपने दुआ मांगी है, तो आपकी मर्जी यही थी ना कि मेरे बेटे को जॉब मिल जाए, ठीक है। तो ये दिस इज व्हाट यू वांट, कि मेरे बेटे को जॉब जॉब मिल जाए। तो भाई आपने दुआ मांगी अल्लाह ताला से, लेकिन अल्लाह ताला कि हिकमत के मुताबिक ये फैसला आया कि नहीं भाई, जॉब नहीं मिलनी इसको, अभी नहीं मिलनी इसकी जॉब, ठीक है। तो अब उसके ऊपर जो है ना, वो अल्लाह ताला से नाराज होकर, क्यों नहीं मेरी जॉब, क्यों नहीं मेरी बात मानी, है ना, अल्लाह ताला से नाराज हो गए, मांगना छोड़ दिया, वो तो सुनता ही नहीं है। या दिल के अंदर जो है वो अल्लाह ताला के बारे में नाराजगी पैदा की हुई है। तो ये जो कैफियत है ना, फिर ये कैफियत का हो जाना ये बताता है कि यू आर एक्चुअली डूइंग तजवीज, है ना। आप अल्लाह ताला को अल्लाह ताला समझ करके उससे आजिजी के साथ दुआ नहीं मांग रहे थे, बल्कि एक तो डिमांड कर रहे थे, और दूसरा अल्लाह ताला का आपने मकाम जो हिकमत वाला, हकीम वाला जो मकाम है, वो आपने माना ही नहीं। भाई अल्लाह का फैसला जो होता है ना असल में, तो वही हिकमत वाला फैसला होता है। अब मेरा काम था मांगना, क्योंकि मुझे नबी अलैहिस्सलाम ने मांगने की तालीम दी है, नबी अलैहिस्सलाम ने सिखाया अल्लाह ताला से मांगना। इसका मतलब क्या है, अल्लाह ताला वांट्स अस टू मेक दुआ, ठीक है। इस वजह से मैं दुआ मांग रही हूँ, इस वजह से कोई थोड़ी कि मैं समझती हूँ कि जो मैं मांग रही हूँ वही जो है वो सही चीज है और वही मेरे लिए फायदा मंद है, उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। नहीं, वो तो मैं जानती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है, उनसे मांगना ये मेरा काम है, लेकिन देना या ना देना ये अल्लाह का काम है, ये अल्लाह का फैसला है, ठीक है। तो इस तरीके से फिर वो तजवीज नहीं बनता, दुआ इज नॉट इक्वल विद तजवीज, बट आवर आवर एटीट्यूड मेक्स इट तजवीज इफ आर एटीट्यूड इज अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ दुआ, देन इट मेक्स इट द चॉइस, ठीक है। अगर वो लिख लिया होगा तो फिर बाद में भी आप उसको एक नजर देखेंगी तो आपको ज्यादा बात समझ में आ जाएगी, और आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। है जरा सदा ऐसी बात है, ये बजाहिर ये सारी बड़ी गड़मड़ किस्म की चीजें आपस में इंटरमिक्स हुई हुई है, ये फिर यानी कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। कोशिश करिए कि आपको इसको अनकंफ्यूजिंग बना करके समझा सकें, आई डोंट नो कितना मैं इस मकसद में कामयाब हो सकता। अच्छा, वक्त भी हो गया, तो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं बस, के तो इब्ने अतिया अतिया और जुमख्शरी रहमतुल्लाह अलैहिम, इन्होंने कहा कि यानी इन्होंने बाकायदा जो अपनी तहकीक करी, जाहिर हदीस मुबारक की रोशनी में तहकीक करते हैं और सहाबा किराम के अकवाल की रोशनी में तहकीक करते हैं, तो उन्होंने जो सारी रिसर्च करी ना इस वाली आयत के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि हमारा ओपिनियन ये है कि हिसाबुहुम और अलैहिम की जमीरें, यानी हिसाब का मतलब हम उर्दू में भी समझते हैं हिसाब का मतलब क्या होता है, ठीक है, हिसाब किताब करना, और अला ये होता है कि पर, ऊपर, अपॉन, ये तो हो गया ना, एक तो नाउन हो गया और एक जो है वो हर्फ हो गया, पार्टिकल कहते हैं ना उसको इंग्लिश में। लेकिन हुम क्या है? हुम जो है ना ये प्रो नाउन, ये जमीर कहलाती है। तो अब प्रो नाउन किस नाउन का प्रो नाउन है, कौन नाउन कौन है इसका? जैसे आप कहें कि अहमद इज अ गुड बॉय, ही ओबेज हिज पेरेंट्स, ठीक है। तो अब जो ही आपने दूसरे जुमले जुमले में इस्तेमाल किया तो ये प्रोनाउन है। तो भाई इस प्रोनाउन का नाउन कौन है, अहमद या पेरेंट्स? पेरेंट्स भी तो नाउन है ना, जुमले के अंदर पेरेंट्स भी मौजूद है लफ्ज, और अहमद का लफ्ज भी मौजूद था, ठीक है। तो ये दोनों नाउन है, और फिर एक और बॉय, ये भी नाउन है। तो ही का जो प्रोनाउन है ये किस वाले नाउन की तरफ पॉइंट कर रहा है, ये अहमद की जगह पे इस्तेमाल हुआ है, या ये पेरेंट्स की जगह पे इस्तेमाल हुआ है, या ये बॉय की जगह पे इस्तेमाल हुआ है, किसकी जगह पे इस्तेमाल हुआ? तो इसका जवाब जो है वो अंग्रेजी समझने वाला आसानी से दे सकता है कि भाई ही का जो प्रोनाउन है ना ये अहमद की जगह पे इस्तेमाल, इट्स एक्चुअली पॉइंटिंग बैक टू अहमद, ठीक है। तो बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट जो है वो अरबी जुबान में होता है, हर जुबान के अंदर होता है यही प्रोनाउन और नाउन का कॉन्सेप्ट, तो हर जुबान में होता है। तो यहां पर जो प्रोनाउन्स हैं हम, तो इनका नाउन कौन है, किन का हिसाब जो है वो आपके ऊपर नहीं है, और किन की और आपके ऊपर, यानी और किन के ऊपर आपका हिसाब नहीं, किन की बात हो रही है। तो इन्होंने तहकीक करके जवाब दिया कि ये प्रोनाउन जो है वो कुफारे मक्का के सरदारों की तरफ पॉइंट कर, ये उमर जताने की तरफ पॉइंट नहीं कर रहे हैं। जैसे कि पीछे जो पेज के ऊपर हमने हदीस पढ़ी थी कि उमर जताने ने मशवरा दिया था कि इन लोगों को अपने पास से हटा दीजिए, ठीक है ना। तो कोई इस आयत को पढ़े और इस हदीस को पढ़े और फिर इन दोनों को ज्वाइन करके वो ये नतीजा निकाले कि अच्छा, तो अल्लाह ताला उमर जान के बारे में फरमा रहे हैं कि उन्होंने जो है वो मशवरा दिया था, तो नऊज बिल्ला सुम्मा नऊज बिल्ला, वो ये समझे कि उमर अजान के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि चूंकि उन्होंने मशवरा दिया था तो उनकी बात मत मानना, और उनके नऊज बिल्ला हमने दिल को जो है वो अल्लाह की याद से गाफिल कर दिया और उनका जो है वो मामला हद से गुजर गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये जो प्रोनाउन्स हैं ये कुफारे मक्का की तरफ पॉइंट कर, क्योंकि असल में तो तजवीज कहां से आई थी, वो तो कुफारे मक्का के सरदारों की तरफ से आई थी ना, ठीक है, कि अबू तालिब को उन्होंने कहा कि नो को हटा दिया जाए यहां से, तब हम आएंगे सुनने के लिए, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि इनकी जमीरें जो है ना, ये जो प्रोनाउन्स हैं वो उन रउसाए मुशरिकीन की तरफ राज्य हैं, यानी पॉइंट कर रहे हैं जो गरीब मुसलमानों को मजलिस से हटा देने की फरमाइश किया करते थे। तो हफ्ता आला ने आज को बता दिया कि ये लोग फा ईमान लाएं या ना लाएं, आप बामुकाबले गुरबा मुस्लिमीन के इनकी परवाह ना करें, क्योंकि उनके हिसाब की जिम्मेदारी आप पर नहीं है, जैसे कि आपके हिसाब की जिम्मेदारी उन पर नहीं है। अगर ये जिम्मेदारी आप पर होती, यानी उनके मुसलमान ना होने पर आपसे हम मुआवजा करते, क्यों नहीं मुसलमान हुए वो लोग, ठीक है। तो उस सूरत में आप रुसाए मुशरिकीन की खातिर गुरबा मुस्लिमीन को मजलिस से हटा सकते थे, ठीक है ना। यानी जब आपसे नंबर्स लिए जाते हैं ना, जैसे कि दुनिया वाले जो है ना वो नंबर्स मांगते हैं कि कितना तुमने रुपया बनाया, हमें नंबर्स में हिसाब दो, ये मत बताओ कि तुम कितनी देर दुकान पे बैठे थे, कितनी तुमने एफर्ट करी जो है वो सेल करने के लिए, हमें तुम्हारी एफर्ट से कोई सरोकार नहीं है, हमें तो माल से सरोकार है, हमें तुमने शाम को कितना पैसा ला करके दिया दुकान से। तो अब जाहिर है जब पैसा जो है वो का हिसाब देना है, तो फिर तो वो दुकान वाला जो है वो झूठ बोल करके भी अपना माल बेचेगा, क्योंकि मुझे जो मालिक है सेठ है उसको पैसों का हिसाब देना है ना, मालिक ये कोई थोड़ी देखेगा कि मैं तो 24 घंटा जो है दुकान पे बैठा रहा और मैंने खाना भी दुकान पे बैठ करके ही खा लिया और मैंने नमाज भी जो है दुकान के अंदर ही पढ़ ली, मैं तो मस्जिद भी नहीं गया नमाज पढ़ने के लिए, मैं तो सारा वक्त जो है वो आवाज लगाता रहा, आ जाओ माल खरीद लो माल खरीद लो माल खरीद लो, और इतना अच्छा माल है इतना अच्छा माल है, लेकिन कोई खरीद ही ना नहीं रहा था, तो अब मेरा क्या कसूर है इसके अंदर। तो दुनिया का मालिक तो ये नहीं देखता ना कि कितनी मेहनत करी है, दुनिया का मालिक क्या देखता है, कितना प्रॉफिट, ठीक है। अल्लाह ताला का मामला ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला क्या देखना देखते हैं, सिर्फ यही देखते हैं कि तुमने कितनी एफर्ट करी है। बल्कि अल्लाह ताला हकीकतन तो ये भी नहीं देखते कि कितनी एफर्ट करी है, अल्लाह ताला तो खाली दिल का हाल देखते हैं कि तुम्हारे दिल में नीयत कितनी थी एफर्ट करने की। अल्लाह कबीरा, हमारा मामला कितना आसान है और अल्लाह का मामला कितना अच्छा है। अल्लाह ताला तो एफर्ट भी नहीं देखते, हकीकत यही है, अल्लाह ताला तो एफर्ट भी नहीं देखते, अल्लाह ताला दिल की कैफियत देखते हैं कि इसके दिल में मेरे लिए एफर्ट करने की नीयत कितनी थी। राइट, अल्लाह ताला ये कर सकते हैं ना, हम तो किसी के दिल की एफर्ट, दिल की नीयत को तो देख ही नहीं सकते, तो हम तो जाहिर एफर्ट ही देखते हैं ज्यादा से ज्यादा। बहुत अच्छे जो जो लोग होते हैं वो एफर्ट देखते हैं, बुरे लोग जो है वो एफर्ट नहीं देखते बल्कि वो माल देखते हैं, रिटर्न देखते हैं। और जो बहुत अच्छे भी इंसान होते हैं ना वो भी ज्यादा से ज्यादा क्या देख सकते हैं, एफर्ट देख सकते हैं कि भाई कितनी एफर्ट करें तुमने। क्यों? इसलिए कि दिल की कैफियत तो हम देख ही नहीं सकते किसी की, लेकिन परवरदिगार वो तो दिलों का हाल जानता है ना, तो उसको तो एफर्ट देखने की भी जरूरत नहीं है, वो तो दिल की कैफियत को देखता है, दिल की नीयत को देखता है। तो हमारा मामला कितना आसान हो गया अपने अल्लाह के साथ, हम दिल की कैफियत ऐसी बनाए कि ए अल्लाह अगर आप जो है ना वो मुझे अच्छी सेहत दें, मैं सारी सेहत जो है वो आपके दीन के लिए लगा दूं, अगर आप जो है मेरे वक्त के अंदर बरकत दे दें तो मैं अपना सारा वक्त जो है वो आपके रजा के लिए लगा दूं, अगर आप मुझे मालो दौलत की फरावानी दे दें, ए अल्लाह मेरी नीयत ये है, और आप मेरी नीयत अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं आपसे झूठ तो नहीं बोल सकता, मेरे दिल की नीयत ये है कि मैं सारा माल जो है ना वो आपके दीन ही की खातिर लगा दूं, अपनी जरूरत, खाना पीना तो वो जरूरत है ना मेरी, लेकिन खाऊं पीऊंगा भी जो मैं अपने माल से वो भी आपके दीन की खिदमत ही के लिए खाऊं पीऊंगा। दीन की खिदमत का मतलब खाली ये नहीं होता कि गरीबों के अंदर अपना सारा माल बांट दिया, नहीं, खा रहा हूं अपने माल का लेकिन उससे भी मैं दीन की खिदमत ही करूँ, ठीक है ना, जो एनर्जी आएगी जो मेरे पास जो है वो घर आएगा, घर को भी मैं अपने आपके दीन के लिए लगा दूंगा, ठीक है। तो अल्लाह ताला यहाँ पे फरमाते हैं कि भाई इनके मुसलमान ना होने पर आपसे हमने मुआवजा करना ही नहीं, रिजल्ट हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो बस ये देखना है कि आपने जो है वो क्या किया। तो इस सूरत में आप रउसाए मुश्रिकीन की खातिर गुरबा मुस्लिमीन को मजलिस से हटा सकते थे, लेकिन अगर ऐसा नहीं है क्योंकि हमने तो आपसे नंबर्स तो चाहिए नहीं, तो उनको मजलिस से हटाना खुली बेइंसाफी होगी, अगर आप सिर्फ ऐसा करेंगे तो आपका शुमार बेइंसाफ लोगों में हो जाएगा, ठीक है ना। यानी वही बात है ना कि भाई जब मुझे ये चीज चाहिए ही नहीं है तो तुम जो है वो उसके लिए क्यों कोई गलत काम करो, ठीक है, मुझे तुमसे नंबर्स चाहिए नहीं है, जैसे कि कभी हमारे यहाँ भी बोल दिया जाता है कभी हमें भीड़ चाहिए ही नहीं है, भीड़ राइट, लोग इकट्ठे हो जाए, लोग जो है वो जमा हो जाए, भीड़ चाहिए नहीं है, भीड़ की जरूरत ही कोई नहीं है, अल्लाह ताला लोगों को भेज दे, भेज दे, मर्जी है अल्लाह की, ना भेजे तो क्लास करने के लिए तो एक स्टूडेंट ही काफी होता है, एक स्टूडेंट टीचर के लिए बस काफी है क्लास करने के, दर्स देने के लिए एक बंदा काफी है। हाँ जाहिर से एक के बगैर अगर जीरो बंदा होगा, जीरो स्टूडेंट होगा तो फिर क्लास करने की तो कोई तुक ही नहीं बनती है ना, अब आप किसको पढ़ा रहे हैं, हाँ जिन अगर आपके पास आ जाए तो जिनों को आप पढ़ा रहे होंगे हो सकता है, लेकिन हमारे पास तो जिन नहीं आते, तो अगर एक स्टूडेंट भी नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे, नमाज पढ़ेंगे भाई, तिलावत कर लेंगे, मुराकबा कर लेंगे, घर वालों के साथ कोई और काम कर लेंगे, लेकिन एक बंदा, एक स्टूडेंट भी है हमारे पास, हम फिर भी उसको पढ़ाएंगे, हमें भीड़ की जरूरत नहीं है क्योंकि अल्लाह ताला हमसे भीड़ चाहते ही नहीं, अल्लाह ताला तो चाहते हैं कि तुम्हारे दिल की नीयत क्या है, कि तुम मेरे दीन की खिदमत करना चाहती हो, चाहते हो या नहीं करना चाहते, ठीक है, तो तुम दिल की नीयत बना लें। बस यहाँ पे आज की क्लास हम रोकते हैं क्योंकि टाइम जो है काफी हो चुका है, इंशाल्लाह फिर अगले मजलिस के अंदर या क्लास के अंदर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, दूसरी आयत में इरशाद फरमाया गया। वा आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।